أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، پیارے دوستو، السلام علیکم. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے پچھلے کچھ پروگرام سے نماز سے سمبندھت مسائل کے بارے میں بات چیت کو آرمبھ کیا ہے. ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں وہ واجبات جو رکن ہیں ان میں سے دو چیزوں کے بارے میں بات چیت کی، جن میں سے ایک نیت تھی اور دوسری تکبیرۃ الاحرام تھی. اس سے سمبندھت ہم نے آپ کے سامنے جو مسئلے سمبھو تھے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے. ہم اپنے آج کے پروگرام میں قیام کے بارے میں بات چیت کریں گے. قیام بھی ان واجبات میں سے ہے جو رکن ہیں، اور ان واجبات میں سے بھی ہے جو غیر رکن ہیں. ہم اس سے سمبندھت جو مسئلے ہم سے سمبھو ہو سکیں گے اور سمے ہم کو اجازت دے گا، اس کے بارے میں آپ کے سامنے بات چیت کریں گے. تو قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، یعنی کھڑے ہونا قیام کہلاتا ہے. یہ قیام کبھی رکن ہوتا ہے. اس کا ارتھ یہ ہے کہ اگر انسان بھولے سے بھی اس کو نہ کرے تو اس کی نماز باطل ہے. اب یہاں پر شاید فوراً کوئی پرشن کرے کہ بھائی، وہ لوگ جو کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، جو مریض ہیں، جن کو کوئی اور بیماری جس کے کارن وہ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، وہ قیام کیسے کریں؟ تو ان سے سمبندھت وشیش پرکار کے مسئلے ہیں جن کو ہم اپنے اگلے کسی پروگرام میں بیان کریں گے. تو قیام دو پرکار کا ہوتا ہے، قیام یا رکن ہوتا ہے یا غیر رکن ہوتا ہے. قیام رکن کون سا ہوتا ہے؟ وہ قیام جو تکبیرۃ الاحرام کے بعد ہوتا ہے، یعنی جس سمے ہم تکبیرۃ الاحرام کہنا چاہ رہے ہیں اس سمے جو قیام ہوتا ہے، اس سمے جو کھڑا ہونا ہوتا ہے وہ رکن ہے. یعنی اگر اس کو کوئی انسان بھولے سے نہ کرے اور ایسی تکبیرۃ الاحرام کہہ جائے بیٹھے بیٹھے، تو اس کی نماز باطل ہے. اور وہ قیام جو رکوع سے پہلے ہوتا ہے وہ بھی رکن ہے، یعنی اس کو بھی اگر بھولے سے ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، تو اس کی نماز باطل ہوتی ہے. اس کے علاوہ قرات کے سمے ایک قیام ہوتا ہے، جس کو ہم آگے کسی مسائل میں وسترت روپ سے آپ کے سامنے بات چیت کریں گے، وہ غیر رکن ہے. یعنی اگر اس کو بھولے سے آدمی چھوڑ دے یا بھول جائے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. یا رکوع کے بعد جو قیام ہوتا ہے یہ بھی غیر رکن ہے، اور اس سے بھی اگر انسان بھولے سے چھوڑ دے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. تو قیام سے سمبندھت جو مسائل ہو سکتے ہیں، جو احکام ہو سکتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ جس سمے ایک نماز گزار نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے آوشک یہ ہے کہ جس سمے وہ تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے، یعنی وہ تکبیر جو نیت کے فوراً بعد کہی جاتی ہے، جس سمے وہ کہتا ہے اس سمے وہ کھڑا ہوا ہو تب وہ تکبیر کہے، یعنی کھڑا ہو پھر تکبیر کہے. اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جس سمے وہ تکبیر کہنا چاہتا ہے اس سے پہلے بھی تھوڑی دیر کھڑا رہے اور اس کے بعد بھی تھوڑی دیر کھڑا ہو، تاکہ اس کو اس بات کا وشواس ہو جائے کہ وہ قیام جو رکن تھا، یعنی تکبیر کے سمے جو قیام کہا جاتا ہے وہ رکن ہے، وہ رکن اسے انجام دے دیا ہے. یہ مسئلہ کہاں پر اپنا لابھ دکھاتا ہے، کہاں پر اس کا فائدہ سمجھ میں آتا ہے؟ یہ فائدہ ہمیں اس سمے سمجھ میں آتا ہے اس مسئلے کا، جب ہم جیسے کسی مسجد میں پہنچے، نماز جماعت ہو رہی ہے، امام ہمارا رکوع میں ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے نیت کر کے امام کے ساتھ سملت ہو جائیں. تو اگر کوئی انسان کھڑا ہوتا ہے، نیت کرتا ہے اللہ اکبر، سیدھے تڑ سے رکوع میں، یا اللہ اکبر کہتے ہی کہتے رکوع میں چلا گیا، تو اس کا چونکہ اس نے قیام جو متصل بے رکوع، قیام جو تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ تھا اور وہ قیام جو متصل بے رکوع تھا اسے نہیں کیا ہے، اس کے کارن اس کی نماز باطل ہوگی. اس کے لیے آوشک یہ ہے کہ وہ جلدی سے یعنی نیت کرے، نیت کرنے کے بعد تکبیر کہے، اور تھوڑی دیر، شاید دو سیکنڈ کا معاملہ بھی نہ ہو، اگر تھوڑی دیر کھڑے ہونے کے بعد رکوع میں جائے تو اس نے اپنے قیام کو پورا کر لیا اور رکن پورا ہو جائے گا، اس کی نماز صحیح رہے گی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جس سمے تکبیر کہنا چاہ رہا ہے اس سے پہلے بھی تھوڑی دیر کھڑا رہے اور اس کے بعد بھی تھوڑی دیر کھڑا رہے، تاکہ اس کو وشواس ہو جائے اس نے اپنے رکن کو انجام دے دیا ہے. اور اس کے بعد قیام متصل بے رکوع، جو ہم نے آپ کو بتایا کہ قیام متصل بے رکوع جو ہے، یعنی رکوع سے ملا ہوا جو قیام ہے، رکوع سے ملا ہوا جو کھڑا ہونا ہے، یہ بھی رکن ہے. اس کا ارتھ کیا ہے؟ اس کا ارتھ یہ ہے کہ انسان جس سمے رکوع میں جانا چاہتا ہے اس سے پہلے وہ کھڑا ہو. यानी क्या मतलब? जाहिर है हम कोई ये कहेगा कि भाई रुकू में जब कोई जाना चाहता है तो खड़े तो होता ही है, तभी तो रुकू में जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी इसका लाभ कहाँ पर समझ में आता है? इसका लाभ यहाँ पर समझ में आता है कि अगर कोई इंसान मान लीजिए रुकू को भूल गया, उसने हमने पढ़ा सूरह पढ़ा सीधे सजदे में चला गया, रुकू को भूल गया, तो अब यहाँ पर इस कयाम मुत्तसिल बे रुकू का मतलब समझ में आता है कि इंसान अगर भूल गया तो उसके लिए आवश्यक यह है कि जब वो दोबारा उठता है सजदे से रुकू करने के लिए, क्योंकि रुकू भी रुक नहीं छोड़ नहीं सकता, लिहाजा फ़ौरन उठता है। तो अगर मान लीजिए ये सजदे में गया है, तो अगर ये उठता है फ़ौरन यहीं से जो है सजदे से उठते ही रुकू में चला जाता है, तो ये सही नहीं है। इसके लिए अगर ऐसा करता है उसकी नमाज़ बातिल होगी, बल्कि उसके लिए आवश्यक यह है कि सजदे से उठे, उठ के सीधा खड़ा हो, कयाम करे, उसके बाद रुकू में जाए, ताकि वो कयाम मुत्तसिल बे रुकू को अपने अंजाम दे चुका हो पूरी तरीके से। और इसमें कयाम ही में है कि जिस समय इंसान नमाज के लिए खड़ा हो रहा है तो उसके लिए आवश्यक ये है कि जिस समय वो नमाज के लिए खड़ा हुआ है तो उसके दोनों पैर ज़मीन के ऊपर हों। ऐसा ना हो कि एक पैर उठा के दूसरे पैर के ऊपर रख रखा है, या पीछे कुर्सी रख रखी उस पर रख रखा है, यानी अगर कोई विवशता नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, तो उसके लिए आवश्यक ये है कि दोनों पैरों को अपने ज़मीन के ऊपर रखे। हाँ, यहाँ पर यह ज़रूरी नहीं कि अपने शरीर का पूरा बोझ दोनों पैरों पर हो, नहीं, बल्कि किसी अगर एक पैर पे भी है तो उसमें कोई इश्काल नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, और उसका क़याम सही होगा। यहाँ पर उसके बाद जो मसाइल पैदा होते हैं वो ये हैं कि इंसान क़याम करने के बाद हमदो सूरा पढ़ता है, तो नमाज में जिस समय हमदो सूरा पढ़ रहा है उस समय बेहतर ये है कि इंसान का पूरा शरीर ठहरा हुआ हो, हरकत ना हिल हो रही हो, हिलडुल ना रहा हो। लेकिन बाद लोग को उंगली चटकाने की या उंगली हिलाने या हाथ वगैरह हिलाने की वो होती है, आदत होती है, इस प्रकार की चीज़ें होती, तो उनके लिए क्या है? तो बेहतर यह है कि ना किया जाए, यानी उंगलियां भी हिलाई ना जाए, हाथ हिलाया ना जाए, लेकिन अगर कोई हिलाता है तो उसकी नमाज बातिल नहीं है, उसकी नमाज सही होगी। यहाँ पर इसके बाद अगर कोई इंसान मसलन हमदो सूरा जब पढ़ रहा है नमाज में, हमदो सूरा पढ़ते समय या तस्बीहात अरबा पढ़ते समय अगर इंसान का शरीर एकदम से हिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि हिलने लगे, अपने आप पर कंट्रोल ना कर सकता हो, तो क्या करेगा? तो उसके लिए हमारे फुकहा ये कहते हैं कि अगर इंसान एकदम से हिल जाए, अपने ऊपर कंट्रोल ना कर सके, तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो जिक्र, वो हम्द और वो सूरा जो उसने हिलते डुलती हालत में पढ़ा है, उसके लिए आवश्यक यह ठहर जाए, और ठहरने के बाद उन अज़कार को जो हिलते डुलते समय में पढ़ा है उसने, उसको दोबारा पढ़े। इस मसले का लाभ हमें कहाँ समझ में आता है? इस मसले का लाभ हमें उन स्थानों पर समझ में आता है जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है, जैसे जो लोग हज में गए हैं वो इस मसले को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, या जो लोग ज़्यारतों पर गए हैं वो इस मसले को अच्छे समझ सकते हैं कि जब इंसान भीड़ भाड़ में खड़ा होता है नमाज़ पढ़ने के लिए, अभी उसने नियत की, हम तो सूरह पढ़ ही रहा है, कोई बगल से गुजरा उसको टक्कर मार दी, हिलने डुलने लगा, तो जिस समय इंसान हिल डुल रहा है तो उसके लिए आवश्यक ये है कि वो चुप हो जाए, कोई जिक्र ना पढ़े, जब शरीर अपने स्थान पर फिर रुक जाए तो उसके बाद वो हमदो सूरा पढ़े, और अगर पहले पढ़ लिया था तो उसकी कज़ा करे। यानी क्या मतलब? अगर इसने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हिलते डुलते में, तो उसको दोबारा चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से दोबारा शुरू करे। इसी प्रकार तस्बीहात अरबा में भी है कि अगर पढ़ लिया था हिलते डुलते समय तो उनको दोबारा शुरू करे, उसके बाद अपनी नमाज को आगे बढ़ाए। उसके बाद कयाम, चूँकि हमने कहा कयाम का मतलब अर्थ होता है खड़े होना, तो इंसान के लिए जहाँ तक संभव हो सके वो खड़े होकर नमाज़ पढ़े, यानी अगर सही सालिम है, बीमार नहीं है, तो सीधे खड़े होकर नमाज़ पढ़े। अगर वो इंसान बैठ के नमाज़ पढ़ता है तो उसकी नमाज़ सही नहीं होगी। और अगर कोई इंसान बीमार है, खड़ा नहीं हो सकता, कोई और कारण है, कोई व्यवस्था है, तो उसको चाहिए कि वो टेक लगा के नमाज़ पढ़े। अगर मैं टेक लगाए, खड़े होकर टेक लगा के, यानी किसी चीज़ का सहारा लेके, अगर ऐसा भी नहीं कर सकता है तो वो बैठ के नमाज़ पढ़े। और अगर कोई इंसान बैठ के भी नमाज़ नहीं पढ़ सकता है तो उसको चाहिए वो लेट के नमाज़ पढ़े, यानी लेट के अपने चेहरे को क़िबले की तरफ करके उसके बाद वो अपनी नमाज़ को आगे बढ़ाए और नमाज़ को पूरा करे। और अगर यानी दाहिनी करवट लेट के, और अगर कोई इंसान दाहिनी करवट भी लेट के क़िबले की तरफ चेहरा करके नमाज़ नहीं पढ़ सकता है तो बाईं करवट लेट के क़िबले की तरफ चेहरा करके नमाज़ को अपनी पढ़े। ये उन लोगों के लिए है जो लेट के नमाज, जो बैठ के नमाज़ नहीं पढ़ सकते। अब अगर कोई इंसान दाहिनी और बाईं करवट भी लेट के क़िबले की तरफ चेहरा करके नमाज नहीं पढ़ सकता है, तो जैसा कि इस्लाम ने कहा है कि नमाज किसी भी हालत में छोड़ी नहीं जा सकती, अब कोई ये नहीं कह सकता, चूँकि मैं दाहिनी तरफ भी नहीं कर सकता करवट, बाईं तरफ भी नहीं कर सकता, बैठ के भी नहीं पढ़ सकता, खड़े होकर भी नमाज़ नहीं पढ़ सकता, तो अब नमाज़ मेरे लिए छुट्टी ना। तो ऐसे सूरत में इस्लाम कहता है जब इंसान दाहिनी और बाईं करवट करके भी नमाज़ नहीं पढ़ सकता है तो उसके लिए आवश्यक ये है कि इंसान सीधा लेट जाए, सीधा लेट के नमाज़ पढ़े। लेकिन एक बात का ध्यान रखे, वो क्या कि जिस समय इंसान सीधा लेटा है उसके पैरों के तलवे क़िबले की तरफ हों, यानी जिससे जैसे मुर्दा लेटाया जाता है कि हालत इंतज़ार में जो होता है, जो वाजिब भी है कि जो लोग वहाँ पर उपस्थित हैं अगर कोई इंसान हालत इंतज़ार में है तो उसके शरीर को क़िबले की तरफ कर दें, तो इस तरह से कि उसका पैरों के तलवे क़िबले की तरफ हो। इसी तरह से ये है कि इंसान अपने पैरों के तलवों के क़िबले की तरफ करके लेटे और उसके बाद वो अपनी नमाज़ को पढ़े। हाँ, इसके बाद जो मसला आता है वो ये मसला आता है कि नमाज जो पढ़ रहा है, जो नमाजी है, उसके लिए वाजिब ये है कि जब उसने रुकू किया है तो रुकू करने के बाद पूरी तरीके से खड़ा हो। ये वो कयाम है जो रुकन में से नहीं है, यानी अगर भूले से कर जाए तो यहाँ पर नमाज बातिल नहीं होगी। यानी इंसान रुकू में जाए, अगर यूँ नमाज़ पढ़ने खड़ा हुआ तो, अगर यूँ रुकू है तो रुकू करने के बाद जब सजदे में जाना चाह रहा है तो उसके लिए वाजिब ये है कि वो अपने आप को पूरी तरह से यूँ खड़ा करे, खड़ा करने के बाद दोबारा सजदे में जाए। ये कयाम वो कयाम है जो रुकन नहीं है, यानी अगर इंसान कोई भूले से रुकू में गया, रुकू से जाने के बाद फ़ौरन सजदे में चला जाए भूले से, तो उसकी नमाज़ बातिल नहीं होगी। लेकिन अगर इंसान जानबूझ के यूँ खड़ा हुआ था रुकू में गया और यहीं से या थोड़ा सा खड़ा हुआ सीधे सजदे में चला गया तो उसकी नमाज़ बातिल हो जाएगी। इसलिए वाजिब ये है कि रुकू के बाद जब सजदे में जाना चाहता है इंसान तो अपने आप को पूरी तरीके से खड़ा करे और उसके बाद वो सजदे में जाए। तो ये वो मसाइल थे जो हमारे क़याम से संबंधित मसाइल थे जो हमने आपके सामने बयान किया। तो क़याम दो प्रकार का होता है, या रुकन होता है या गैर रुकन होता है। रुकन वो क्या, दो क़याम ऐसे हैं जो नमाज में रुकन हैं, जैसे पहला क़याम जो तकबीर से पहले, तकबीर के समय कहा जाता है, दूसरा क़याम जो रुकू से पहले होता है, ये रुकन क़याम है, अगर भूले से भी छोड़े जाएँ तो नमाज बातिल है। उसके अलावा दो क़याम हैं, एक क़याम जो क़िरात के समय किया जाता है, दूसरा क़याम जो रुकू के बाद होता है, ये गैर रुकन है। ये वो क़याम है कि अगर इंसान को भूले से छोड़ देता है, भूले से छूट जाते हैं तो उसकी नमाज़ बातिल नहीं है, लेकिन अगर जानबूझ के छोड़ता है तो उसकी नमाज़ बातिल होगी। तो ये वो चीज़ें थी जो हमने आपके सामने ये बयान की, वाजिबात नमाज में थी, रुकन में से थी। उसके बाद जो एक और चीज़ जो वाजिबात नमाज में से है वो है क़िरात। यहाँ पर क़िरात से संबंधित बहुत से मसले हैं कि क़िरात, पहले बात यह, क़िरात कहते हैं किसको है नमाज में। नमाज में अल्हम्दु का सूरा या दूसरा सूरा और तस्बीहात अरबा या नहीं, वो तमाम जिक्र जो पढ़े जाते हैं उन सबको क़िरात कहा जाता है। इसके संबंध में बहुत ही बड़ी बहस है जिसके बारे में हम आपको विस्तृत रूप से अपने किसी दूसरे प्रोग्राम में बताएंगे। सिर्फ संक्षेप में हम इतना कह सकते हैं कि अगर संक्षेप में क़िरात का तात्पर्य और उसकी व्याख्या बयान की जाए तो ये हो सकती है कि हर वो चीज़ जो नमाज में पढ़ी जाती है उसको क़िरात कहते हैं। इसके बारे में बहुत सारे मसाइल हैं जिसको हम अपने अगले किसी प्रोग्राम में विस्तृत रूप से आपके सामने बयान करेंगे। तब तक के लिए हमारा इंतज़ार कीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।